कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
तो वो कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब है। तो परमात्मा आए, ऋषभ देव जी को बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया। ऋषभ देव जी बहुत प्रभावित हुए और इतना बैराग हो गया कि राज्य भी त्याग दिया, अपने पुत्रों को सबको, भरता जी को सबको राज्य दे दिया। लेकिन उसी समय ये ब्राह्मण लोग ये गणे परमात्मा एक ही ऋषि रूप में आते हैं, मिलते हैं। तो बाद में ऋषभ देव जी को उन नकली काल प्रेरित गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया कि वो झूठा है, कपटी है, वो गलत ज्ञान बताता है, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म लोक तो ऊपर कोई स्थान नहीं। अब ऋषभ देव जी ने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग 1000 वर्ष तक किया, 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद निराहार रहकर कुछ नहीं खाया 1000 वर्ष तक। इतने तगड़े शरीर होते थे पहले सतयुग में। तो जब उन्होंने प्रथम बार अपनी उपासना पूर्ण की और वो व्रत खोलिया, तो सबसे पहले धर्म देशना बोले हैं दीक्षा को, अपने पौत्र भरत के पुत्र को, अपने बेटे के बेटे को यानी पोते को, मारिची नाम था उसका, सबसे पहले ऋषभ देव जी ने उस मारिची को नाम दिया। और ऋषभ देव जी केवल ओम मंत्र ही जाप करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे, जो खिचड़ी ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से जो ग्रहण किया हुआ है। इसके लिए थोड़ा सहयोग लेते हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र यानी पोते मारीची को प्रथम मंत्र दिया, प्रथम यानी पहला चेला वो ही मुंडिया, और वो मारीची वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन कहलाए। अभी आपको दिखाते हैं एक प्रमाण जैन धर्म का। एक जैन संस्कृति कोश 3 भागों में है और इनको वो फाइनल मानते हैं, जैसे हम गीता जी वेदों को मानते हैं, ऐसे इन तीनों पार्ट को, 3 पार्ट हैं ये, तो इनको ये अंतिम मानते हैं। और प्रथम भाग में आपको दिखाते हैं, देखिए जैन संस्कृति कोश, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास प्रथम भाग, और ये है प्रोफेसर है भागचंद्र जैन भास्कर। ये कहां से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोश जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातन प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, समंती प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपा है? जैन इतिहास, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B33A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी, फोन नंबर इतना। और भागचंद्र जैन दूसरा है प्रकाशक, भागचंद्र जैन भास्कर ये वही है, लेखक भी है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये नीचे प्रकार, ये प्राप्ति स्थान। अब ये है, ये किसने, ये पुण्य स्वर्गीय पुण्य पूज्य पिता श्री गोरे लाल जी जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है। ये भागचंद्र जैन के माता पिता की तरफ से को समर्पित है। अब यहां हम आपको दिखाते हैं, इसके प्रश्न नंबर 175 पर ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र, यानी भरत जो इसका पुत्र था, ऋषभ देव के पौत्र मारीची अर्थात भरत के पुत्र, मारीची भरत का पुत्र था जो ऋषभ देव का पुत्र था, को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यानी मारीची को। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यानी महावीर जैन बना, यही आत्मा आगे चलकर। 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास कला और पुरातत्व, यहां देखना। तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभी राज के पुत्र थे, उनकी माता मरुदेवी थी, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभी राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभी राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियां थी। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और दो पुत्रियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार, एक वर्ष तक रहे, एक दार में गलत कर गया, अगर एक दार वर्ष तप किया, एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का रस, गन्ने का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वृत्ति को, निराहार वृत्ति को यानी उस व्रत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि, फिर 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की उसने, मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, या कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया अपने आप 1000 वर्ष तक तप करके, और उसमें जितना उसने ज्ञान हुआ जो भी प्राप्ति हुई उसके आधार से धर्म देशना यानी नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना, प्रथम नाम भरत के पुत्र मारीचि को दी यानी उसको दीक्षा दी अपने पौत्र को, जो बाद में 24वें तीर्थ कर महावीर बने, ये महावीर जैन बना। अब यहां से हमने इतना ही लेना है, बस आगे घड़ी की जरूरत पड़ी ये देखना तोड़ पाटेगा। अब पुण्यात्माओं, ऋषभ देव जी ओम मंत्र का जाप करते थे और ये भी इसमें ओम को आगे चलकर अणोम करण लागे, अणोम 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 नहीं ओम है, इसलिए सीधा ओम बोल दे, अलग से इसकी प्रक्रिया आने वालों ने अन्य तीर्थकरों ने कर दी। प्रथम तीर्थकर जो महान आत्मा ऋषभ देव जी थे, उन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया। इसको ये करते कैसे थे, ओम ऐसे करते रहते थे, तो बाद वालों ने उनको अणोम कहने लगे अणोम, लेकिन ये ओम है। तो ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप करते थे और उन्होंने सातवां हठ योग भी करते थे, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण होता है, जो वेदों अनुसार और गीता अनुसार नहीं है वो मनमाना आचरण होता है। जो वेदों और गीता से ली गई साधना है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, लेकिन वो कितनी साधना कहां तक की है उतना ही लाभ मिलता है उसको। तो वही मंत्र, वही साधना, वही विधि ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र, अपने पोते मारीचि को दी, जो भरत का पुत्र था, और मारीचि के जीव को इस साधना के करने से कितना दुख और कितना सुख हुआ ये वर्णन करते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, इन्हीं बड़े जैन संस्कृति कोष से ही निष्कर्ष निकालकर लिखा गया है। देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, यह ओम अरिहंताम अणोम अणोमो, यज्ञ मंत्र मंत्र यज्ञ, परवण जैन, परवण चंद्र जैन एमए शास्त्री, इन्होंने इसको लिखा है। ये देखियो, आओ जैन धर्म को जाने, लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री जम्मू दीव हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्मू दीव हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश। ये इनके प्रकाशक हैं और ये मुद्रित है दिनेंद्र जैन न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ, फोन नंबर इतना। ऋषभ देव जी का कोई गुरु नहीं था, ऋषभ देव जी के कोई गुरु नहीं थे, वो अपने आप ही अपनी साधना किया करते थे। हम 293 पर चलते हैं, वो जो मारीचि वाले जीव ने जो साधना ऋषभ देव जी से लेकर की थी, ओम नाम का जाप और अन्य साधना जो तप किया, उससे उसको क्या परिणाम मिला, 293 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं, अन्य 5 नाम हैं, एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम वर्धमान। आगे देखो, अब 294 पे और जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की प्रिया से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि राज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहां गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी इस मारीचि से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीचि हुआ, महावीर का जीव। फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया, उससे नाम लेकर के ऋषभ देव जी से नाम लेकर ओम नाम का जाप करके ये ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहां गया? सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहां गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रि से अग्निसह नामक पुत्र हुआ। अग्निसह फिर कहां गया? स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहां गया? ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर भारद्वाज कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, और अब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आता है। अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया? अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है, अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है, 1000 वर्ष, 1000 आंख के वृक्ष, 1000 वर्ष तक, 1000 तो आंख के वर्ष के भाव, 1000 बार तो आंख का वृक्ष बना, और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के, और 3,000 बार चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर। ओहो, यहां फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, और 60 करोड़ बार गधे के भाव। ओहो, 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा, हे भगवान, 60 करोड़ बार, ओहो, 60 करोड़ बार गधे के शरीर, और 30 करोड़ बार कुत्ते, रही खी कसरिया निकल गई कुत्ते के जीवन, एक कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है, और 30 करोड़ बार कुत्ते का शरीर, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के शरीर भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, वो तेरा गजब, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब पुण्यात्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो उत्पत्ति होती है, अंडरज, जेरज, उद्बुद, शब्दज, यानी अंडे से, जेर से, जैसे मां के गर्भ में मनुष्य है, पशु हैं इनमें, और अपने आप जैसे सुरसी हो जाती है, अपने आप जो उत्पन्न होते हैं। ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, इनको चार पार्ट बोलते हैं, चार खानी, चार विभाग। इन चारों विभागों में उत्पन्न प्राणियों की संख्या कितने प्रकार की होती है? 84 लाख। 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है, चार खानी में भटकते धक्के खाते। जैसे इन ऋषभ देव जी ने भी नाम लिया, इनकी भी जन्म मृत्यु अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यही आगे चलकर बाबा आदम हुए ऋषभ देव जी, और बाबा आदम फिर उसमें स्वर्ग में गए हुए हैं। स्वर्ग के अंदर एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग में विराजमान है और वहां भी दुखी। उन मुसलमानों वाले इस पुस्तक में लिखा है, हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में, कि बाबा आदम हजरत मोहम्मद ने देखा, वो एक बार हंस रहे थे, एक बार रो रहे थे। हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से, जबराइल से, कि ये कौन व्यक्ति है? जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है? कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है, जो नेक नीति से रहा करती वो स्वर्ग में है, और जो निकम्मे थे, भक्ति करी नहीं, मांस मिट्टी खाते थे, वो नरक में पीटे जा रहे हैं, बुरान मिट्टी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मे संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है, और जब स्वर्ग की तरफ देखता है, अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है, तब वो खुश होता है। तो पुण्यात्माओं, इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति जैसी पृथ्वी पर है, ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे। एक ही स्थान है सतलोक, जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा, मारिची जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया, और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ, वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बना। अब उस देवता ने के चट गधा कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं, कुछ श्रद्धालु ज्यादा होते हैं, वो ये सोचते हैं कि, कहते हैं कई बार, कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे, कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, तो यहां पृथ्वी पर कौन रहेगा? तो खाली रह जाएगी पृथ्वी, तो एक कैद है, कैद एक दुख सथल है, और हम पहले वहीं रहते थे सभी, तो पड़ी रहेगी खाली, ये निर्ग्रह धक्के खानते अंडे ये और घूम लेगी खाली, अपन के लेना इसका ऊपर, हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहां कौन रहेगा, इसने के फूका गे जड़े, इसी दुरुक्ति होने लग रही जीव की, एक पल में भरोसा नहीं, के हो जा कभी परले हो जा, कभी सूखा पड़ जा, कितना भूकंप आकर दुनिया मर जाए, कितना साइक्लोन आ गया लाखों लोग मर जाते हैं, कितने सर्दी सतावे गर्मी सतावे सैकड़ों बीमारियां। तो यार यहां रहना के शौक है तो मजबूरी फंस रहे हम, जब ज्ञान आपको हो जाएगा। तो क्या बताया है कि अब वो मारीची वाला जीव इतने दुख पाकर आगे फिर क्या हुआ, महावीर जैन वाले जीव की आगे क्या हुआ देखना। यही है आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने। हम 295 पृष्ठ पर आगे हैं, हमने ये पढ़ लिया। ओहो 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंग, 20 करोड़ बार क्षत्रिय, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तक देवता होया और बाकी या ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया। ये सातवें नरक में और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया। सिंह गिरी पर, सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं, सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर उसके बाद वो ही मारिची वाला जीव 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। अह श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और सच ना पूरा पावते झूठा जगपति आई हो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच्ची कहता हूं और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता, और ये झूठों के जो गल साधना बता रहे हैं, ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो रही है, उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो, मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, और ऋषभ देव जी ने, क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी, उस ओम नाम के जापत और हठ योग करने से, तप करने से, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा और देखा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए, और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया, अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके, निवस्त्र रह करके साधना की, और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं राजा ऋषभ देव जी से वेदानुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए, लेकिन 80 लाख बार देवता भी बन गए, क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग अलग भोगना पड़ता है। और अब इसने ना तो वेदानुसार साधना रखी महावीर के रूप में, और उसने आगे अपने अनुभव से वेदों से हटकर पाखंड मत चला दिए 363, जो वर्तमान के जैनी भाई और ये गुरु लोग उस महावीर जी द्वारा बताए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनको तो कुछ भी ना मिल रहा है, स्वर्ग में सपने में भी नहीं जा सकते, ये तो सीधे ही नरक और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये दास का जो उपदेश है अपना बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का विधान बताया, और पुण्यात्मा इसको महसूस करें, गहराई से सोचें और इससे पीछा छुटवाएं और परमात्मा की भक्ति करें। इन्होंने स्वयं लिखा कि उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड माने व्यर्थ बकवाद, वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीचि जी की भी कितनी दुर्गति हुई, लेकिन कुछ राहत अवश्य साथ मिली। फिर उस राहत ने के चट है गधे और कुत्ते की योनि भोगी, फिर देवता बन गया, आग लगे इसे देवता पद के। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में गधे कुत्ते सुअर की योनियों में धक्के खाते फटकते, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओहो, सतगुरु यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सत साधना करने से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना तो 84 लाख योनियों में जाना, ना गधे कुत्ते सुअर की शरीरों में धारण करना, और इससे बाईपास निकाल करके या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा यदि भक्ति पूरी ना हुई, और साधना पूरी होगी तो हम सतलोक चले जाएंगे। अब क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। ओए होए, कितनी प्यारी व्याख्या की है कि ऐसा संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, जो इन सभी दुर्गतियों से, इस प्रकार के सभी कष्टों से, सभी योनियों से बचा दे। उस सत मंत्र के आधार पे कहते हैं उस संत की सात समुद्र की मसी करूं इंक, सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और लेखनी यानी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, एक वृक्ष के एक टहनी की कितनी कलम बन जा, ढेर लग जा छोटी छोटी कलम। और कहते हैं पूरी पृथ्वी जितना कागज मेरे पास हो, और यदि ऐसे संत के गुण लिखन लगूं ये सभी समाप्त हो जाए, गुण पूरा ना हो। अब एक गधे का जीवन लिखन लग जाओ, एक दिन में उसकी के दुर्गति होती है, फिर कुत्ते का लिखो, सुअर का लिखो, फिर पुराने का, इतने कष्टों के अरुण से परमात्मा ने हमें बचा दिया। यानी सतगुरु के उपदेश ने, सच्चे गुरु जी के सच्चे मंत्र ने हमारे को कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंधे, होवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। ऐसे संत को यदि आप जी केवल मानो ही समझकर ट्रीट करते हैं तो कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे, वो मनुष्य रूप ही है उनका, लेकिन वो तेजों में शरीर अधिक है, उस तेजों में शरीर को सरल करके अलका तेज पुंज का शरीर बना करके वो एज इट इज प्रगट हुए थे छोटे से शिशु रूप में, धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए लीला की, तो ये ज्ञान प्रसार किया करते, सुख यही दिया करते जो आज परमात्मा आप जी को दे रहे हैं, वही कबीर जी इस दास के माध्यम से। तो उस समय हम परमात्मा से इसलिए दूर रहे, उनके संग नहीं जा सके, क्योंकि हम उन अज्ञानी अनाड़ी ऋषियों के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहे। इसलिए यदि परमात्मा कबीर जी कहा करते थे हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दनी, कबीर जी कह रहे हैं मेरा नाम कबीर, लेकिन ये बातें किसी के गले उतरी नहीं कि परमात्मा तो निराकार होता है और ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने परमेश्वर को परमेश्वर माना नहीं, ओनली एक आदमी मान के और ज्ञानी मान के कि विद्वान है, इस करके और कुछ सिद्धियां रखता है, इसलिए हम परमात्मा के साथ चिपके रहे, हमको हमने उनको परमात्मा नहीं माना। और कबीर जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में अगयम के फंदे। गुरुदेव को वो तो भगवान स्वयं आए थे और इस दास को भेज दिया अपना आप जी को समझाने के लिए, अब मुझ दास को भी अपनी उन्होंने पावर दी है मालिक ने ही इस दास को, और वही सब परमात्मा ही कर रहे हैं, कबीर जी की शक्ति ही आप जी का सुख, आप जी को सुख दे रही है और साथ में आपको दुखों का निवारण कर रहे हैं और साथ में ये ज्ञान वही बता रहे हैं उन्हीं की वाणी से। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि यदि आपने गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना तो फिर भी काम कच्चा रह जाएगा, आपकी साधना विफल हो जाएगी। एक नियम है गुरु मानुष कर जानते वो नरकई है अंधे। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा, और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है, जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहां लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, यदि गुरु जी को तुम मानुष मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, और वह दुखी संसार में आ गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखा अपने महावीर जैन की के दुर्गति हुई, कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसीडर नहीं किया, तो गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न, एक ब्याज का एक चैप्टर होता है, उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और जब तक हम 100 रुपए मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपए की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए आप जी ने गुरु जी को मान लो, गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड है हमारे, और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं, यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए, परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहां कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने। इतना भय लगे परमात्मा गुरु जी के दरबार में आकर परमात्मा तुल माने, और ऐसी कोई बात ऐसा मन में कोई विचार कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरु जी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पड़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरु जी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहां पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे त्रिकुटी पे। त्रिकुटी पे जाकर तुम्हारी वहां छटनी होएगी। यहां आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है गेहूं जैसा डंगा खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है, वो दोनों एक जैसे पौधे होते हैं। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है यो खरपतवार है यो गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहां गुरु जी को परमात्मा तुल जान कर और निष्कपट भाव से सच्ची श्रद्धा से साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल निकड़ाओगी थर अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हर यू खोटा। तो उस खराब पौधे ने निकाल के किसान बाहर फेंक देता, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता गधे खाओ उसने। और गेहूं को अपने ला करके कोठिया में डाल लेता है। तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से जैसी श्रद्धा जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहां की है, तो वहां आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा, और वहां फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहां भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहां उसी का वहां एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका। और वहां भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा जैसा यहां रख रहे हो वैसा ही वहां होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा स्वप्न आओगा। अब जैसे आप जी को स्वप्न आते हैं तो जैसा व्यवहार आप यहां इस दास के साथ कर रहे हो वैसा ही स्वप्न में आएगा, तो इसी प्रकार वहां भी एक स्वप्न होगा, आप होगे परमात्मा होंगे इस दास के रूप में। तो वहां अगर आपने आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो वहां से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते हैं, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है, और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होगी, माननी जाएगी। गुरु और गोविंद दोनों खड़े वहां, मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बनाकर खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप, तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए, अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा। ये नियम है ईश्वर। और तुम चरण छुओ ओरा के किसी सासू के कि ससुरे के कि और बड्डे छोटे के सपने में भी ना छूने चाहिए अपन। भाव ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है या किसी को प्यार नहीं देना है या शिष्टाचार खत्म कर देना है, नहीं। वो शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने। और पुत्र वधु सासू के चरण छुया करे नो चरण दाबेगी नो और वह नो कहे बेटी बूढ़ सुहागण हो दूध दान आओ कुत्ता फड़ियो। अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो वह वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुया करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले। और चरण छोड़ते कौन सा बुढ़े के को पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के चाहे बड़े के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बहन बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह। एज हे मरीज जान के आवश्यकता समझ गए वो बेशक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलव्या में करो, किसी तरह सेवा करो, पां दो गर्म पानी ते जब ठंड लाग रही होता है सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहां गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्मा इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी विवाह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कारवश। और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा। तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। अब जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करे कि हमारा राम रुस गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पापति आएगी। अब राम रुस गया पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, राम रुस गया आपका, गुरु की शरण में जावे। कबीर हरी जय रूठ जा गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूस गया, दुख हो गया, पत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो तो सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत हैं उन्हीं के विषय बताया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले है जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में बर्म्या भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए, परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो दुकान पे खेत में कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी गट गट पानी पी लिया। और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आएगी, पैसे मर गए, फिर चले कहां, हैंडपंप के पास। हैंडपंप पर गए और वहां हैंडपंप की सेवा की और फिर मटका भर लिया। सेवा मीन पूजा, यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा उसका हैंडपंप का हैंडल और जल भर लिया, मटका भर के आगे। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गया, आपका मटका खाली हो गया। कहां जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताएं वो हैंडल लाइए, यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा बढ़ा दे रहा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे, हैंड पंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। अब कोई न कहे तुम मटके का जल चाहिए या हैंड पंप, तो हैंड पंप में तो हजार मटके भर ले, और हैंड पंप। अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठियां रूठते, गुरु की शरण में जाए और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। आप जी ने हैंडपंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंडपंप खराब हो कर दिया। हैंडपंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए, अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंडपंप से मिल रहा था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, एंड पंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा। एंड पंप खराब हो गया तो बेसे गलाएं जाइए डंडे ने, कुछ लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द व्यहु ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को। कई कह घर ने भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहां आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहां खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मांस तुम्हारा तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा। या कोई और गलतियां करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तो यहां से जो आप गुरुजी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरुजी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक हो ना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साहे। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते गो गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और, धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं, वो जब तक उसके चलेंगे वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग एंड पंप खराब कर लिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो, 4 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है नया, फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, एक साल माया कोई चार साल माया धक्के खा के बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे, आना चाहिए कोई बात नहीं, एक दो बार हम खुरकावा धमकावांगे, लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, उसको तो कभी असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा, ठीक है अब तक वो पुण्य है उसके चलते रहेंगे, जितने एक वर्ष चलेंगे, दस वर्ष चलेंगे, बीस वर्ष चलेंगे, आगे वह दुर्गति होगी इस प्राणी की, सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्मा, जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख अखूरो चरण ऊपर शीश धरूं, कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो वाणी हम बोलते हैं प्रतिदिन, उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा, उससे मैं समझ में आओगी कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप हमसे भूलियो मत, आपके पास से लाखों लोग आ जाएं, क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यह सुख ग्रहण करती हैं, तो वो तो आपको चाहेंगी, आप हमने ना भूलिए, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगी आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले, सतगुरु नकले गुरु तो मेरे मिल लिया हमने, सब दुख आखों रो। ये बातें हैं पुण्यात्मा, जो दूसरे पंथों के पास, संतों के पास 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहां पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है। रात को भी कहते हैं, बैठ कर रोते, हमारा क्या हाल हो गया, ये कहां गए, इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें, हैं हे परमात्मा बड़ी दया हुई, अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, वो पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं, जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है, ज्ञान गंगा तीर्थ कर रहे हैं भगजन, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं, और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं, गुरुजी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर, हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिलेंगी, मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे। पुण्यात्माओं, आप जी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है, जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके साथ हैं, जो आप जी को इस पीक टाइम में, इस भक्ति काल में आपका मनुष्य जन्म है, और पूरी पृथ्वी पर जिसको मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यकर्मी प्राणी है, उनसे अधिक पुण्यकर्मी वो हैं जो यहां जुड़ जाएंगे, इस मालिक के शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से उपदेश प्राप्त कर लेंगे, वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी है। और अब भी जो रह जाएंगे वो मनुष्य जीवन पाकर भी अपना जीवन व्यर्थ करके जाएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अब मनुष्य जीवन पाकर जो सत साधना नहीं करते वो तो ऐसे हैं जैसे वेल विदाउट वाटर, यानी जल रहित कूप। कितना अच्छा सुंदर कुआ बना हो और उसमें जल है नहीं, तो नाम बेसिक कुआ है पर उस गुण कुएं के कोना। ऐसे ही जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो सत साधना नहीं कर रहे वह भले ही मनुष्य कहलाते हैं पर उनमें गुण मनुष्य के नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे। ऐसा बोलो सतगुरुदेव ई जय। Thank you.